सुन ले भाई रे, धरती को सोना बनाने वाले भाई रे,
धरती भी तेरी अंबर भी तेरा, तुझको ही लाना है अपना सवेरा।
काली रात बंधुआ की खत्म होने आई रे,
धरती को सोना बनाने वाले भाई रे, धरती को सोना बनाने वाले भाई रे।
नमस्कार, आदाब। मजदूर वाणी के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मजदूर वाणी एक प्रयास है, एक कोशिश है समाज में दबे कुचले लोगों को मुख्य धारा में लाने की। दोस्तों, लोक रिवायत ही इस मुल्क की पहचान रही है। इस मुल्क के लाखों मजदूर आज भी अपनी पहचान इसी लोक शैली से जोड़ते हैं। मजदूरों की आवाज को, उनकी समस्या को उन्हीं की लोक शैली में दुनिया के सामने लाने की हमने एक कोशिश की है।
दोस्तों, मजदूर वाणी के इस आज के प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान हैं बंगाल मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश जी। स्वामी जी, आपका स्वागत है।
जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
स्वामी जी, कार्यक्रम का प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बंगाल मुक्ति मोर्चा के 25 साल पूरा करने पर बधाई देना चाहूँगा। जाहिर है, यह भी जानना चाहूँगा कि 25 साल का यह सफर आपने कैसे तय किया।
ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल, और इसके लिए भी धन्यवाद आपका। 25 साल पहले जब हम खुद नहीं जानते थे कि सचमुच में ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, हमने ये शुरू किया जब हमें बंधुआ मजदूरों का एक पता चला पत्थर खदानों में, फरीदाबाद की पत्थर खदानों में और हरियाणा के ईंट के भट्टों में। तो दिल्ली बॉर्डर के साथ लगे हुए इस इलाके में जब हमने देखा कि पत्थर तोड़ने वाले जो मजदूर हैं, जिस दहशत में जी रहे हैं, वो कर्ज के बोझ में दबे हुए, जो भी एडवांस लोन वगैरह देते हैं मालिक और ठेकेदार उनके, और न्यूनतम मजदूरी का कुछ भी नहीं, उनके जानवरों से बदतर ज़िंदगी देखी हमने। तो जब हमने उनको पहली बार छुड़ाया तो हम स्वयं नहीं जानते थे कि ये असल में संघर्ष कैसा है। मैं लंबी कहानी नहीं कहना चाहता, लेकिन बात इतनी सी बताना चाहता हूँ आज आपको कि हमारे इस संघर्ष को जब हमने शुरू किया था तो हमें पता नहीं था कि पूरी व्यवस्था, जिसको हम देखते हैं बाहर से बड़े अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े अमीर लोग, ये कितने इसमें लिप्त हैं, गरीब मजदूरों का खून चूस चूस करके जो अमीरों ने अपने महल खड़े किए हैं। तो इसको हमने देखा अच्छी तरह से, और जो भी निर्माण का काम हो रहा है, जो भी खदान है, ईंट के भट्ठे हैं, खेतों में खेत मजदूर हैं, उनको किस तरह से अमानवीय शोषण का शिकार बनाया जा रहा है। तो खैर, मैंने आपको ये बताया कि 25 साल तक हम लड़ते 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 आज यहाँ पर पहुँचे हैं कि सारी दुनिया को ये स्वीकार करना पड़ा है कि भारत ही नहीं, भारत की तरह से नेपाल में भी, पाकिस्तान में भी, और दुनिया के तमाम देशों में, चाहे वो दक्षिण अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे एशिया के दूसरे देश हों, और कहीं कहीं तो यूरोप और अमेरिका तक में भी ये बंधुआ मजदूरी की प्रथा है। और जब लोगों को ये महसूस हुआ तो आज से 10 साल पहले उन्होंने मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में, जो समकालीन दासता विरोधी ट्रस्ट, उसका मुझे उन्होंने अध्यक्ष बनाया। मैं 10 साल तक उसका अध्यक्ष रहा, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में हमारा दफ्तर। और ये सफ़र दिल्ली के पत्थर खदानों से शुरू हुआ हरियाणा के, और ये जिनेवा के उस मानव अधिकार आयोग तक पहुँचा, भारत के सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा, भारत की पार्लियामेंट में गूंजा, सारे देश के अखबारों ने, पत्र पत्रिकाओं ने, टेलीविज़न चैनल्स ने इसमें अपना बड़ा सहयोग दिया।
समझिए, मैं रोकना चाहूँगा आपको। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस बंधुआ की, इस सेलेब्रिटी की लड़ाई में काफ़ी लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इतिहास साक्षी है कि बड़े बड़े लोगों ने दुनिया के दूसरे दूसरे हिस्सों में भी सेलेब्रिटी के खिलाफ, बंधुआ के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की है। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि भारत में जो लाखों मजदूर, जो एक जमींदारों के शोषण में दबे पड़े हैं, पत्थर खदान में मजदूरों के अंदर में दबे पड़े हैं, उन्हें मुक्ति हो, उन्हें मुक्ति मिले, ये अंतरात्मा की आवाज़ आपको कैसे मिली और ये प्रेरणा आपको कैसे मिली?
हाँ, ये बड़ा बहुत ही बुनियादी सवाल है। अब इसकी प्रेरणा मैं जब भी सोचता हूँ मुझे कहाँ से मिली, तो सबसे पहले तो मुझे महर्षि दयानंद याद आते हैं, जिनकी प्रेरणा से मेरा एक नया जन्म हुआ और मैं कलकत्ते की सड़कों में भटकता हुआ जब अपने कॉलेज के एडमिशन के लिए गया था 1956 में, और जब मेरी मुलाकात हुई आर्य समाज के एक बड़े विद्वान आचार्य रमाकांत जी से, मैंने ऋषि दयानंद की वो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक पढ़ी, मेरी आँखें खुल गई। मैं धर्म को बिल्कुल उल्टा जानता और मानता था, पूजा पाठ और कर्म कांडों में लगा रहता था। मैं ईश्वर के बारे में भी ऐसा सोचता था कि ईश्वर की तारीफ कर दो तो खुश हो जाता है, नहीं करो तो नाराज हो जाता है। लेकिन वेदों को पढ़ के, उपनिषदों को पढ़ के जो मेरा ज्ञान खुला कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है और मानव मात्र एक परिवार है और हम सब परमात्मा की बराबर संतान हैं, ये जातिवाद ऊंच नीच का भेदभाव ये हम लोगों ने बनाया है, परमात्मा की तरफ से बना हुआ नहीं है, ये अमीर गरीब भी हम लोगों ने बनाए हैं, परमात्मा ने नहीं बनाए हैं, और तरह के भेदभाव जितने भी अन्याय हैं उनके बारे में मेरी एक नई सोच पैदा हुई, ये 1956 के बाद की बात मैं बता रहा हूँ।
हमारी ये चर्चा जारी रहेगी लेकिन इस ब्रेक के बाद।
ओ तो हरियाल हो रे बना हरि सवागे बनी रो रे, ओ तो हरियाल हो रे बना रे वो हरि सवागे बनी रो रे गले मोतने केरी हर माला
महसूस करते हैं कि देश की आजादी के 58 साल के बावजूद बंधुआ मुक्ति आज भी मुल्क के लिए अभिशाप बना हुआ है।
अभी भी लाखों करोड़ों, वो गांधी जी ने जिस अंतिम आदमी की बात कही थी, वो अंतिम आदमी आज भी सिसक रहा है, दम तोड़ रहा है, उसकी सिसकियां तक नहीं सुनाई पड़ रही हैं देश के हुक्मरानों के कानों तक। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि भारत को आजाद हुए आज 58 साल हो गए हैं और अभी तक हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो भारत में संविधान के तहत दी गई जिम्मेदारियां हैं, बुनियादी जिम्मेदारियां, उनको हमारी किसी सरकार ने पूरा करने का बीड़ा उठाया, और उसकी वजह से मेरा तो ये अनुमान है कि करोड़ों की संख्या में आज हमारे देश में बंधुआ मजदूर उस गुलामी की जिंदगी को जीने के लिए अभिशप्त हैं। वो केवल वयस्क लोग ही नहीं हैं, उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल से कम उम्र के बच्चे भी बंधुआ मजदूरी की लानत झेल रहे हैं, और 16-16, 18-18 घंटे उनसे काम लिया जा रहा है, उनको मजदूरी के नाम पर केवल मात्र जैसे पशु को चारा डाल देते हैं, इस तरीके से उनसे काम लिया जा रहा है, और राजधानी के अंदर भी इस प्रकार की घटनाएँ, और हमने तो रिपोर्ट तैयार की है और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को भेंट करके आए, श्रम मंत्री को भेंट करके आए दिल्ली के, कि दिल्ली जैसे देश की राजधानी में यदि बंधुआ मजदूरी है तो फिर देश के दूर दराज के इलाकों में कितनी भयंकर हालत होगी। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमारे देश में बंधुआ मजदूरी अभी भी पूरी तरीके से मौजूद है और इसको मिटाना ये हमारा एक संकल्प है, और अगले 25 साल लगें, 50 साल लगें, 100 साल लगें, कई जिंदगियां लग जाएं, लेकिन हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे।
समझिए, इन 25 वर्षों में आपको कैसा नहीं लगा कि कानूनी पहलू से ज़्यादा इसका मानवीय पहलू है जिस पर हर किसी को गौर करना चाहिए?
ये भी बहुत सही बात आपने कही कि लोग कानून में बाल की खाल निकालते हैं, और चूँकि जो कानून को पढ़ता है, समझता है, लागू करने की जिसकी जिम्मेदारी है, वो खाते पीते तबके का है, वो स्वयं बंधुआ मजदूर नहीं रहा कभी, वो स्वयं इस दलित वर्ग से, आदिवासी समाज से उसका ताल्लुक नहीं है, वो उच्च वर्ग का है, तो स्वाभाविक रूप से वो ऐसी कोशिश करता है कि वो कानून में कहता है नहीं ये बात पूरी नहीं होती, नहीं ये बात पूरी नहीं होती, इसलिए इसको बंधुआ मजदूर नहीं कहा जाएगा। आज तक होता है, जब हम लेके शिकायत जाते हैं बंधुआ मजदूरों की, तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स वगैरह हैं वो कहते हैं नहीं जी स्वामी जी आप की बात ठीक है लेकिन ये कानून में बिल्कुल बंधुआ मजदूर नहीं साबित हो रहे। फिर जब हम उन्हें कहते हैं चलिए देखिए खुद अपनी आँखों से और अपने आप को महसूस कीजिए कि आप उस हालत में हैं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे उस हालत में हैं, उस झोपड़ी में जहाँ पैर फैला करके कोई नहीं सो सकता, पूरा परिवार रह रहा है, और जेठ की दोपहरी में पत्थर तोड़ रहा है या खेतों में हल चला रहा है, और खाने के लिए उसको सूखे चावल मिल रहे हैं, तो आप सोच के देखिए कि आपकी ज़िंदगी का केवल एक दिन ऐसा बीता है, तो उनको कपकपी चढ़ जाती है, उनको पसीना आ जाता है, वो सोचते हैं सचमुच में बहुत भयंकर हालत। तो ये मानवीय संवेदना जो है, और मानवीय संवेदना ही हमारे वेद और वेदांत की एक ऐसी कसौटी दी है हमारे महापुरुषों ने, कहा है कि दूसरे के दुख को ऐसा समझो जैसे तुम पर स्वयं बीत रहा है या तुम्हारे अपनों पर बीत रहा है। तुम्हारा अपना बच्चा किसी बाल बंधुआ मजदूरी का शिकार हो गया, जिस समय ये मानवीय संवेदना जगती है तो मैंने देखा है कि बड़ा से बड़ा पत्थर दिल भी पसीज उठता है और उसको लगता है कि ये घोर अन्याय हो रहा है।
स्वामी जी, मुल्क का कानून बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए कितना सक्षम है?
देखिए, कानून पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन कानून को लागू करने वाले, उनकी मानवीय संवेदना उनका साथ नहीं दे रही है। वो बड़े बड़े ओहदों में बैठे हुए हैं या राजनीतिक नेता हैं, तो उनको भी लोगों ने घेर रखा है। सारा काम जितना बड़ा भी हो रहा है देश के अंदर, उसमें पैसा ही पैसा लगता है, और पैसा जब घूमता है एक जेब से दूसरी जेब में, तो मानवीय संवेदना को रौनता हुआ चला जाता है, ख़त्म कर देता है। और इसके हमने बहुत से नतीजे देखे 25 साल के दौरान। ये कानून तो बहुत ही अच्छा है, उसमें बहुत अधिकार दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिसको हम जिलाधिकारी कहते हैं, जिलाधीश या कलेक्टर भी कह देते हैं, और जो सब कलेक्टर होते हैं या SDM कहते हैं, उनको बहुत अधिकार है। और यदि उन अधिकारों का वो समुचित प्रयोग करें तो बहुत दूर तक ये बंधुआ मजदूरी का कलंक मिट सकता है। इसके साथ ही साथ है कि यदि न्यूनतम मजदूरी का न दिया जाना प्रमुख कारण है बंधुआ मजदूरी का, तो देश भर में एक अच्छी न्यूनतम मजदूरी लागू कर दी जाए, उस कानून को भी जो अंग्रेजों के समय का बना हुआ कानून है। भारत के स्वतंत्रता के बाद तो बना, लेकिन भारत तभी तक गणतंत्र नहीं बना था। 1948 में हम गणतंत्र नहीं बने थे, 50 में बने 26 जनवरी को, तो उससे पहले का बना हुआ कानून है, लेकिन उस कानून को भी थोड़ा हम और आधुनिक बनाएं, आज के हालात में बनाएं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। तो मुझे लगता है कि हम अकेले न्यूनतम मजदूरी को ही एक मुद्दा बना करके पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी इतनी रखें और उसको दिलाने के लिए अभियान चलाएं, रेडियो टीवी पर खूब जोर शोर से उसका प्रचार करें कि इतनी मजदूरी, और इससे कम देना अपराध है, बंधुआ मजदूरी है। ये बात यदि हम चिल्ला चिल्ला करके बताएंगे पूरे देश को, और 10-20-50 लोग जो इसका अवहेलना कर रहे हैं उनको पकड़ करके अंदर करेंगे, तो मुझे लगता है कि सब होश में आ जाएंगे, सबको पता लगेगा कि न्यूनतम मजदूरी से खिलवाड़ करना कितना महंगा होता है।
दोस्तों, अगर आप भी इस संबंध में कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। हमारा पता है बंधुआ मुक्ति मोर्चा, 7 जंतर मंतर रोड, नई दिल्ली, 11-0001। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। नमस्कार, खुदा हाफिज़।